ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम का 9 अध्याय 10 श्लोक संख्या 2। तस्य अपि भगवान् एषः साक्षात् ब्रह्ममयः हरिः अंश अंशेन चतुर्धा अगात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरहि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्धा अगातपुत्रत्वं प्रार्थितैश्वरैः। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्धा अगात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः रामलक्ष्मणभरत शत्रुघ्नः इति संज्ञया। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्घात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः रामलक्ष्मणभरत शत्रुघ्नः इति संज्ञया। तस्य महाराज दशरथ के अपि भी भगवान भगवान एषः वे सभी साक्षात प्रत्यक्ष ब्रह्ममयः परब्रह्म या परम सत्य हरिः भगवान अंश अंशेण पूर्ण अंश के अंश से चतुर्धा चार प्रकार के विस्तार अगात स्वीकार किया पुत्रत्वं पुत्र बनना प्रार्थितः प्रार्थना किए जाने पर सुरहे देवताओं के द्वारा राम भगवान रामचंद्र लक्ष्मण लक्ष्मण भरत भरत शत्रुघ्न तथा शत्रुघ्न इति इस प्रकार संज्ञया विभिन्न नामों से अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर परम सत्य भगवान अपने अंश तथा अंशों के भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पावन नाम थे राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न। वे सुविख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में चार स्वरूपों में प्रकट हुए। तात्पर्य भगवान रामचंद्र तथा उनके भाई लक्ष्मण भरत एवं शत्रुघ्न ये सब जीव तत्व ना होकर विष्णु तत्व हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनेक अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम यद्यपि वह सभी एक ही हैं किंतु विष्णु तत्व के अनेक रूप एवं अवतार होते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता 39 में पुष्टि की गई है, रामादि मूर्तिषु कला निमे न तिष्ठन, भगवान अनेक रूपों में विद्यमान है यथा राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न, और ये रूप उनकी सृष्टि के किसी भी कोने के में स्थित हो सकते हैं। ये सभी रूप स्थायी रूप से शाश्वत रूप से ईश्वर की व्यष्टि रूप में विद्यमान रहते हैं और ये समान शक्तिशाली अनेक दीपकों के तुल्य होते हैं। भगवान रामचंद्र लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न ये सभी विश्व तत्व होने के कारण समान शक्तिशाली है। देवताओं के प्रार्थना करने पर ये महाराज दशरथ के पुत्र बने। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि घोर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तस्यापि भगवान एष साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्धावात् पुत्रत्वं प्रार्थिता सुरै राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया। देवता द्वारा प्रार्थना करने पर परम सत्य भगवान अपने अंश तथा अंशों के भी अंश के साथ भगवान साक्षात प्रकट हुए। उनके पावन नाम थे राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न। ये सभी ये सुविख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में चार स्वरूपों में प्रकट हुए, जैसे कि यहां श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम् भजामि। तो भगवान प्रकट होते हैं शिरोदक्षाय विष्णु के माध्यम से। शिरोदक्षाय विष्णु से ये सभी अवतार अवतरित होते हैं इस भूतल में। भगवान एक डेकोरम मेंटेन करते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण भी जब स्वयं आए मथुरा में कंस के कारागार में तो सबसे पहले उन्होंने चतुर्भुज रूप देखा, और उसका आशय यह भी था कि वसुदेव देवी जी की को भी स्मरण कराना था कि ये वही है जिनके लिए उन्होंने तपस्या की थी पूर्व जन्मों में। तो इस तरह से भगवान श्री राम अवतरित हुए भूतल में मर्यादा की स्थापना करने के लिए, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जैसे एक पावर हाउस में सारा प्रकाश पावर हाउस में होता है, सारी एनर्जी सारा पावर होता है, लेकिन अलग 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 बल्बों के द्वारा अलग अलग माध्यम के द्वारा उस प्रकाश को प्रज्वलित किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। प्रकाश वही है लेकिन अलग अलग रूप में प्रकट होता है प्रकाश। इसी तरह से भगवान कृष्ण भी प्रकट होते हैं, कोई शैंडलियर के रूप में है, कोई छोटे बल्ब के रूप में है, कोई ट्यूबलाइट के रूप में है। प्रकाश वही है लेकिन कम या ज्यादा रूपों में प्रकट होता है, कम प्रकाशित होता है या अधिक प्रकाशित होता है, लेकिन प्रकाश उतना ही है जितना कि पावर हाउस से आ रहा है। या फिर दूसरी उपमा दी जाती है पूर्णिमा का चांद, जिसकी तुलना भगवान श्री कृष्ण से की गई है, और उसी चंद्रमा की अलग अलग कलाएं हैं जो कम प्रकाशित होते हैं या अधिक प्रकाशित होते हैं, वैक्सिंग मून या वेनिंग मून जिसको कहते हैं, तो वो भगवान के अवतारों के समान है। तो इसी तरह से भगवान राम जो है मर्यादा की स्थापना करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, स्वयं भगवान जिसको कहते हैं। तो इस तरह से तत्व में कोई भेद नहीं है, राम में कृष्ण में या जितने भी अवतार हैं, सब विश्व तत्व जितने भी हैं वो सब विश्व तत्व है, तो तत्व में कोई भेद नहीं है। भेद आता है भाव में रसों में। भक्त का जो आदान प्रदान होता है भक्तों का भगवान के साथ, उसमें भेद आ जाता है, लेकिन तत्व में कोई भेद नहीं। तत्व में भेद करना एक अपराध है, ये सारे विश्व तत्व है। तो एक घटना मुझे याद आ रही है जुहू मुंबई मुंबई मंदिर की, तो वहां पे एक बार रसूल तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज राम दरबार के सामने खड़े थे और बहुत देर से भगवान राम के ऊपर ध्यान लगा रहे थे। तो एक कोई महाराज आए थे बाहर से, उन्होंने कहा कि आप जो है आपका ध्यान जो है भगवान कृष्ण के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कार, मुझ में मन लगाओ, नहीं मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। लेकिन आप, मैं देख रहा हूं काफी समय से यहां भगवान राम के सामने खड़े, राम दरबार के सामने। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने कहा, महाराज कहते हैं कि मैं भगवान राम के ऊपर ध्यान नहीं लगा रहा था, भगवान राम के साथ वो बाण रखा है ना उसके ऊपर ध्यान लगा रहा हूं, कि कुछ असुरों ने कब्जा करने की कोशिश की है हमारे इस मंदिर को और मंदिर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये बाण मैं उसके लिए रखा हुआ, इसलिए मेरा ध्यान जो है उन बाणों के ऊपर है, उस तीर कमान के ऊपर है। तो फिर उस महाराज ने कहा कि हमारे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को कहा कि आपकी बड़ी निष्ठा है गुरु में। तो खैर जो भी है, लेकिन कहने का मतलब है कि तत्व में कोई भेद नहीं है, भाव में भेद होता है, रसों में भेद होता है। तो कई बार कहते जाता है कि भगवान श्री राम जो है 62 उनमें गुण है। तो 62 गुण कैसे हैं? 60 तो उनके गुण होते ही हैं, महाविष्णु के भी होते हैं। लो 25 बताया गया है, वो 25 इसलिए बताया गया है क्योंकि साकेत धाम में 25 रस है, एक तो शांत रस है, एक दास्य रस है, एक सख्य रस का शुभारंभ है, वासल रस भी है, लेकिन सब आधा आधा है। आधा इसलिए क्योंकि इसमें वैश्य रस का मिश्रण है, ब्रज की तरह सख्य रस नहीं है। सुदामा सखा श्रीदाम सखा ये सब जो है कृष्ण के ऊपर कंधे के ऊपर चढ़ सकते हैं, उनको मुर्गी बना सकते हैं, उनके साथ कुश्ती खेल सकते हैं, उनको गालियां दे सकते हैं। भगवान श्री राम के साथ सुग्रीव जी का जो संबंध है या फिर उस गुहक का संबंध है, ये सब मित्र हैं, लेकिन उसमें ऐश्वर्य का भाव है, मर्यादा कभी नहीं भंग करते हैं, भगवान श्री राम के कंधे पर कभी नहीं चढ़ते हैं सुग्रीव, ये संभव नहीं है। तो वात्सल्य का भाव भी है अगर है माता कौशल्या का, तो उसमें भी ऐश्वर्य का मिश्रण है, वो कहीं ना कहीं जानती है कि भगवान, तो उस तरह का वात्सल्य भी नहीं प्रकट होता है जिस तरह से माता यशोदा का प्रकट होता है ब्रज में। माता देवकी का भी वात्सल्य भाव है, वात्सल्य रस है, लेकिन उसमें भी ऐश्वर्य का मिश्रण है। तो इस तरह के जो भक्त है जो भगवान श्री राम से जिनका संबंध है वो भी उसी रस में स्थित होते हैं, तो उस तरह का फिर वो आदान प्रदान कर पाते हैं माता भगवान श्री राम के साथ। अब यहां पे जो चार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बताए गए, चारों के चारों विष्णु तत्व हैं, चतुर्व्यूह विस्तार भगवान का, प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव संकर्षण, तो यही चतुर्भुज चतुर्व्यूह विस्तार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में हुए हैं और चारों के चारों विष्णु तत्व हैं, चार विष्णु तत्व एक साथ प्रकट हुए हैं महाराज दशरथ के घर पे। तो इस प्रकार अब देखिए प्रमाणिक जो टीकाएं हैं रामायण के ऊपर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है आज के समय में, क्योंकि 300 से अधिक जो है इसके टीकाकार हैं जिन्होंने रामायण के ऊपर टीकाएं लिखी, 300 वर्षन हैं रामायण के ऊपर, लेकिन हम लोग वाल्मीकि रामायण पर जोर देते हैं, वाल्मीकि जी के लिखे रामायण को हम लोग सबसे अधिक प्रमाणिक मानते हैं क्योंकि वो रामायण है। अब सवाल, रामायण करके लिखा है वाल्मीकि जी के ने लिखा है और श्रीपाद रामानुजाचार्य के संप्रदाय में यानी कि श्री संप्रदाय में 15 से अधिक टीकाएं हैं रामायण के ऊपर, बड़े बड़े जो वैष्णवाचार्य प्रमाणिक वैष्णवाचार्य श्री संप्रदाय में उन्होंने रामायण के ऊपर टीका लिखी है। ये बताया जाता है कि श्रीपाद रामानुजाचार्य ने अपने गुरु से 18 times रामायण सुना था, 18 तरीके से सुना, यानी कहने का मतलब 18 प्रकार की उनको अनुभूतियां हुई रामायण सुन के, इसको श्रीपाद रामानुजाचार्य, उसमें से कुछ जो उनके विचार हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला, श्रीपाद रामानुजाचार्य ने जब सुना तो उनको यह अनुभव हुआ कि भगवान श्री राम जो है वह परम तत्व है, नहीं देखने में लगते हैं साधारण व्यक्ति, जैसे भगवान भी गीता में कहते हैं, अवजानांति माम मूढ़ा मानुष्यम तनु आश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। तो साधारण मनुष्य जैसे दिखते हैं भगवान श्री राम और नरलीला ही कर रहे हैं इसलिए, लेकिन फिर भी परम तत्व है और उनका अपना धाम है साकेत धाम। लेकिन श्री संप्रदाय में साकेत धाम नहीं बोलते हैं उसको, उनको कहते हैं वैकुंठाधिपति लक्ष्मी नारायण सीताराम, वैकुंठाधिपति हम क्या बोलते हैं साकेत अधिपति, तो साकेत धाम हम लोग बोलते हैं जो वैकुंठ से ऊपर बताया जाता है, वैकुंठ में अधिकाधिक दास्य रस है या फिर शांत रस है। तो इस प्रकार जो है साकेत धाम में भगवान श्री राम विराजमान है, और इसके अलावा इस तरह इस ब्रह्मांड में भी किम पुरुष लोक में भी जैसे श्रीमद् भागवत के पांचवें स्कंद में इसका वर्णन आता है, जहां पर सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की आराधना होती है, किन्नर जिनको कहा जाता है, देखने में मनुष्य जैसे लगते हैं लेकिन उनका चेहरा जो है इस प्रकार हनुमान जी की तरह जैसे बानर की तरह होता है। तो किम पुरुष लोक में हनुमान जी आराधना करते हैं या और भी जो भक्त हैं वो राम की आराधना करते हैं सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, या सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी, तो इनकी आराधना चलती है, पूजा चलती है। और फिर क्या उन्होंने अनुभव किया श्री बालरामाचार्य ने, उन्होंने देखा कि लक्ष्मण जी साक्षात अनंत शेष, और अनंत शेष क्या करते हैं जो भगवान श्री राम लीला नहीं करते हैं, जो कार्य वो नहीं करते हैं, जो शेष कार्य जो रह जाते हैं उस शेष कार्य को पूरा करते हैं अनंत शेष। सूर्पनखा की नाक को काटना वो लक्ष्मण का कार्य था, वो शेष कार्य था। तो इस तरह का शेष कार्य जो है वो अनंत शेष करते हैं, इस प्रकार की अनुभूति हुई श्री बालरामाचार्य को जब उन्होंने रामायण सुना अपने गुरुदेव से। और फिर भरत जी के बारे में बताने कि भरत जी भी विष्णु तत्व है, और भरत जी जो है वो कभी भी मना नहीं कर सकते श्री राम को, अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, जो अनुकूल है यानी कि जो भगवान राम की प्रसन्नता के लिए है या भगवान राम जो चाहते हैं वही उनकी चाह है, वही उनकी इच्छा है, उसके अतिरिक्त और कुछ वो सोच नहीं सकते हैं, उसके अतिरिक्त उनके मन में कोई विचार आता नहीं। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम, तो अनुशीलन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये तो स्वयं विष्णु तत्व है भरत जी। और भरद्वाज ऋषि जो वाल्मीकि जी के शिष्य हुए हैं उन्होंने ये विचार प्रकट किया कि जप और तप के माध्यम से, जो मैंने तपस्या की और जप किया उसके माध्यम से मैं भगवान श्री राम का दर्शन कर पाया हूं, सीताराम जी का दर्शन कर पाया हूं, जब मैं उनका दर्शन किया तो मैं भरत जी का दर्शन भी कर पाया, भरत जी का दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ भगवान श्री राम के माध्यम से। तो भरत जी क्या है, भरत जी भी एक विश्व तत्व तो है लेकिन महान भक्त भी है, एक परम भागवत भी है, अनन्य भक्त है भगवान श्री राम के, और भरत जी हमेशा जो है श्री राम की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, हमेशा उनकी सेवा में रत। और फिर शत्रुगण के बारे में बताया जाता है, शत्रुगण वो सीधे कभी राम के पास नहीं जाता, सीधे राम को कभी अप्रोच नहीं करते, भगवान श्री राम को सीधा अप्रोच नहीं करते या उनके पास सीधे नहीं जाते हैं, दास दासानु दास का सिद्धांत पालन करते हैं, भरत जी के निकट रहते हैं हमेशा, वो भरत अनुज है, लक्ष्मण रामानुज है, लक्ष्मण क्या है वो रामानुज है, और शत्रुघ्न क्या है भरत अनुज है, और भरत के निकट ही रहते हैं और भरत के माध्यम से, भरत जी के माध्यम से ही राम की सेवा करते हैं। और शत्रुघ्न का अर्थ यह भी है, उन्होंने यह अनुभव किया कि शत्रुघ्न का अर्थ यह भी है कि जो शत्रुओं के हंता है, शत्रुओं का हनन करने वाले वो शत्रुगण है। और उन्होंने क्या अनुभव किया, कोई अगर शत्रुगण का नाम भी अगर ले लेगा तो हमारे हृदय के अंदर जो शत्रु है, षड रिपु है, काम क्रोध लोभ इत्यादि, उसका भी हनन, उसके भी हंता है शत्रुगण, हालांकि अपने आप को बहुत ही ज्यादा विनम्र अवस्था में रखते हैं और हमेशा भरत जी की शरण में रहते हुए भरत जी के माध्यम से ही राम की सेवा करते, और यही हमारा सिद्धांत भी है। तो इस प्रकार और सीता जी के बारे में क्या बताया उन्होंने, सीता जी के बारे में उन्होंने अनुभव किया कि सीता जी जो है भगवान श्री राम की शक्ति है और भगवान श्री राम से अभिन्न है, राइट, उनसे अभिन्न है। और सीता जी हो या राम हो, दोनों ही अयोनिज हैं, किसी योनि से नहीं प्रकट हुई सीता जी, भगवान श्री राम भी योनि से नहीं प्रकट हुए हैं, इसलिए अयोनिज कहा जाता है उनको, दोनों को ही, श्री राम को और सीता जी को, दोनों को अयोनिज कहा जाता है। और ना ये पुरुष से प्रकट हुए ना किसी स्त्री से, पुरुष के माध्यम से प्रकट नहीं हुए, कहने का मतलब ये है कि अयोनिज है। जैसे ब्रह्मा जी को स्वयंभू कहा जाता है, उनका एक नाम स्वयंभू भी है, तो ब्रह्मा जी भी भगवान विष्णु के नाभि से प्रकट हुए हैं, तो ये तो स्वयं भगवान है और भगवान अयोनिज है ही, और लेकिन इस लीला में भी वो अयोनिज। थोड़ा वाल्मीकि जी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि वाल्मीकि जी की विशेषता क्या है, कि वाल्मीकि जी को कैसे भगवान श्री राम के बारे में स्फूर्ति हुई और किस तरह से उन्होंने रामायण लिखा। रामायण बहुत सारे तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा वो रामचरित्र मानस। रामायण कौन सी है, वाल्मीकि जी की है। और क्योंकि हम लोग नारद जी की परंपरा में आ रहे हैं, वैसे तो नारद जी हर संप्रदाय में ही है, सारा संप्रदाय नारद जी से ही निकला है देखा जाए तो वो तो हर जगह मिलेंगे आपको, तो हम भी नारद जी से ही निकले हैं। और नारद जी ने जिस तरह से वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवतम का एक मर्म दे दिया था और नारद जी ने वेद व्यास जी को कहा कि आप इसका विस्तार करिए, इसी तरह से नारद जी ने वाल्मीकि जी को भी रामायण सुनाया, रामायण का जो पहला अध्याय है, और वो भी सूत्र के रूप में सुनाया, सारांश दिया, और नारद जी ने वाल्मीकि जी को कहा इसका विस्तार आप करिए। जिस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रयाग में श्री रूप गोस्वामी को कह दिया, एक सूत्र रूप में दिया, कुछ ही श्लोकों में 10 दिन के भीतर रस तत्व क्या ज्ञान दे दिया, और उन्होंने महाप्रभु ने कहा श्री रूप गोस्वामी का इसका विस्तार करिए। तो शिल प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज ने कहा कि आप पाश्चात्य जगत में प्रचार करिए, और शिल प्रभुपाद जी ने उस शिक्षा को बहुत विस्तार से जो है आगे बढ़ाया, उसका विस्तार किया। प्रभुपाद ने उनके के गुरु महाराज ने उनको कहा राधा कुंड में जब भी आपको धन मिले पुस्तकें छापना, पुस्तकें कितनी छापना, इतनी सारी, उसका वितरण भी करना, फिर इसको कहते हैं विस्तार। विस्तार का अर्थ यह भी होता है कि जो उनके गुरुदेव की आज्ञा है वो तो उन्होंने किया ही, उसके साथ बहुत कुछ किया, उसका विस्तार किया। तो ये विस्तार करने की परंपरा है हमारी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कुछ नया नहीं किया बल्कि विस्तार किया। जो मध्वाचार्य ने जो तत्ववाद दर्शन प्रस्तुत किया है उसका विस्तार किया आगे रस तत्व के देखे, तो इस तरह से विस्तार करते रहते हैं सब। थीसिस वर्क चलता रहता है, कुछ ना कुछ थीसिस का काम चलता रहता है, पीएचडी वर्क चलता रहता है, और पोस्ट पीएचडी भी चलता है, आजकल पोस्ट पीएचडी भी होता है, पोस्ट डॉक्टरेट भी होता है, होता है कि नहीं होता है। तो इस प्रकार इसको समझना है। तो वाल्मीकि जी जो है उनको आदि कवि कहा जाता है, वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है, और वाल्मीकि का मतलब होता है मिट्टी की भांबी। मिट्टी की भांबी का मतलब होता है मिट्टी का, जैसे पहाड़ बना लेते हैं चीटे जो होते हैं, लाल रंग का चीटा देखा है, वो मिट्टी का एकदम से एक पहाड़ जैसे बना देते, पहाड़ मतलब टीला बना लेते हैं, पहाड़ तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन टीला जैसे बन जाता है, और एंट हिल जिसको कहा जाता है, जैसे हिरण्यकश्यपु ने घोर तपस्या जब की तो एक एंट हिल बन गया, वो चीटे जो है अपना पहाड़ बनाने लग गए हिरण्यकश्यपु के इर्द गिर्द। तो इसी तरह से वाल्मीकि का मतलब है मिट्टी की भांबी जो चींटे के द्वारा बनाई गई, वाल्मीकि का मतलब यह होता है। तो इस प्रकार पूरा शरीर जो है वो मिट्टी की भांबी बन गई वाल्मीकि जी की, इतनी घोर तपस्या उन्होंने की थी। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि मेरा जन्म जो है एक बहुत ही निकृष्ट परिवार में हुआ था, अधम परिवार में हुआ था। आजकल जातिवाद का बहुत चल रहा है, पहले भी चलता था बहुत, लेकिन वाल्मीकि जी के कह रहे हैं मैं तो एक अधम परिवार में मेरा जन्म हुआ, लेकिन देखा जाए तो ब्राह्मण के पुत्र थे, लेकिन उनका कार्य इस प्रकार का था कि उन्होंने अपने आप को बहुत अधम माना कि मैं बहुत अधम कुल से हूं और मैंने बहुत सारे बुरे कार्य किए, पाप के कार्य किए, लेकिन एक बहुत बड़े संत के द्वारा मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, यानी कि नारद जी के द्वारा। विष्णु पुराण में घटना आती है कि वाल्मीकि जी पहले एक बहुत बड़े डाकू थे, डाका डालते थे और रास्ते में जो भी गुजरता था उसको लूट लेते थे, चोरी इत्यादि करते थे, कत्ल भी कर देते थे। तो बहुत बड़े डाकू थे वाल्मीकि जी पहले। तो नारद जी एक बार आए, नारद जी को उन्होंने पकड़ लिया। नारद जी कहा निकालो निकालो, मैं निकालूंगा, मेरे पास कोई जेब ही नहीं है, जेब होगा तो निकालूंगा ना मैं, नहीं पुजारियों के पास जेब नहीं होता है, ब्रह्मचारियों के पास जेब होने लगा है अभी, गृहस्थ भक्तों के पास तो पहले से ही जेब था, लेकिन प्राचीन जो प्रथा रही है तो ब्रह्मचारी जो होते थे या सन्यासी होते थे वो कुर्ता नहीं पहनते थे, स्टिच क्लॉथ नहीं पहनते थे, तो उस पॉकेट का कोई फैसिलिटी नहीं था। इसका एक आशय यह है कि अगर जेब ना होने का आशय क्या है, सिद्धांत क्या है, कि जेब में कुछ आप रख सकते हैं, जब जेब ही नहीं है तो कुछ रखेंगे नहीं, लेकिन औतरिया तो है, औतरिया कुछ लोग रखते नहीं, लेकिन औतरिया होता किस लिए है, भीख मांगने के लिए। तो ये विनम्रता का प्रतीक है, विनम्र बनने के लिए आपको औतरिया रखना होगा, क्योंकि इसके माध्यम से आप भिक्षा मांगेंगे, भिक्षाटन करेंगे। जब जाते हैं ना आप डोनर के पास तो औतरिया दिखाइए, चादर दिखाइए कि हम धन को छूते नहीं, आज से जो डालना है इसमें डालिए, चेक कैश जो भी डालना है। तो पॉकेट ना होने का कारण ये, तो नारद जी के पास कोई पॉकेट है नहीं, तो वीणा तो है आपके पास, दे दो। अब वीणा क्या करोगे, बजाना तो आता नहीं तुम्हें। तो नारद जी ने कहा देखो एक बात बताना चाहता हूं मैं, ध्यान से सुनो, तो तुम जो चोरी करते हो, लूटपाट करते हो, डकैती करते हो, इसका दंड तो तुम्हें मिलेगा ही, निश्चित है। मेरा सिर्फ एक प्रश्न है, तुम घर चले जाओ, अपने परिवार वालों से पूछो, पत्नी से, बच्चे से, सबसे पूछो कि मुझे इस प्रकार अगर दंड मिला, मैं चोरी करके लूटपाट करके आप लोगों के लिए इतना कुछ लेके आता हूं, और मुझे अगर दंड मिला तो आप इसके भागीदार बनेंगे। उनकी पत्नी ने कहा आपकी जिम्मेदारी है हमारा ध्यान रखना, अब आप जो पाप कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उसका दंड जो आप भुगतेंगे उसके भागीदार हम क्यों बने, आप खुद भुगतिए। तो वाल्मीकि जी को धक्का लग गया एकदम से, अरे ये क्या बात, परिवार का कोई सदस्य तैयार नहीं है इस दंड में भाग लेने के लिए, केवल उनका लूटा हुआ धन चाहिए बस। बहुत पश्चाताप करने लगे, वापस आए नारद जी के पास। नारद जी का मुनिवर आज मेरी आंखें खुल गई, पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहा हूं मैं, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, बताइए मेरे लिए क्या श्रेष्ठ कर है। तो नारद जी ने कहा कि आप तो समझ ही गए, नारद जी को बांध कर गए थे वो, क्योंकि नारद जी को, नारद जी ने कहा, नारद जी से कहा कि अगर मैं चला जाऊं तो आप कहीं भाग ना जाए, तो बांध दो मुझे, कोई दिक्कत नहीं, पेड़ से बांध दिया था नारद जी को, आगे खोल दिया। तो नारद जी से पूछे आप बताइए, नारद जी से आशीर्वाद मांग रहे थे, कृपा की याचना कर रहे थे। तो नारद जी ने कहा ठीक है, आप राम नाम का उच्चारण करो, इससे आपका भला होगा, इससे कल्याण होगा, जितने भी पाप आपने किए, जो कर दिए, हो गया ठीक है, आगे से मत करना। दीक्षा दे नारद जी ने उनको, पहले जितने पाप कर चुके हो थोक में उसको भूल जाओ, लेकिन अब से मत करना, क्योंकि अब तुम्हारी दीक्षा हो रही है, राम नाम का उच्चारण करो। मुंह से निकल नहीं रहा था, इतना अधम था, इतना पापी था, मुंह से नाम नहीं निकल रहा था। ये तो किसी वैष्णव की कृपा से ही कोई चंडाल, यावण, मलेच्छ जो है भगवान का नाम उच्चारण कर सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। और मायावादियों के मुख से तो कृष्ण का नाम निकलता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से निकलता है, बहुत मुश्किल से निकलता है, इतना अपराध कर चुके होते हैं क्योंकि। लेकिन पापी लोगों के मुख से नाम फिर भी निकल जाएगा, मायावादियों के मुख से निकलना नाम बड़ा मुश्किल होता है। तो ये पापी जो है वैश्यों की कृपा से होता है, इसलिए अद्वैत आचार्य के लिए कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, जब श्रीपाद वल्लभाचार्य आए थे, ये अद्वैत आचार्य हैं, इन्होंने मलेच्छों का उद्धार किया है, ये बहुत उच्च कोटि के वैष्णव हैं। मलेच्छों का उद्धार करना, जो मांस भक्षक है, चंडाल है, कुत्ता खाने वाले हैं, स्वपच हैं, उनके मुख से हरि नाम का उच्चारण करना बड़ा ही कठिन कार्य। उन्होंने कहा ठीक है, अब ऐसा करो, राम नाम प्रत्यक्ष रूप में नहीं ले सकते तो मरा मरा बोलो। अब वो मरा मरा बोलना शुरू किया, वो उनके लिए इजी था क्योंकि उनका दैनिक कार्य था, ये रोज का काम था, तो मरा 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 बोलने लगे, मरा 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 राम राम बोलना शुरू कर दिया। मरा मरा बोलते बोलते राम नाम निकल आया, मुख से राम शब्द निकल आया। इस तरह से घोर तपस्या करने लगे वाल्मीकि जी ने, कई हजारों वर्ष तक वाल्मीकि जी तपस्या करने लगे। इतनी तपस्या की उन्होंने कि बस भगवान को प्रसन्न करने लगे। नारद जी से उन्होंने प्रश्न किया था, आप मुझे एक बात बताइए मुनिवर, अभी इस पृथ्वी में सबसे अधिक चरित्रवान व्यक्ति कौन है, गुणवान व्यक्ति कौन है, सबसे अधिक शक्तिशाली और सुंदर व्यक्ति कौन है, प्रभावशाली है, और जिसके पास हर प्रकार का ऐश्वर्य है, जिसका हृदय कोमल है कमल के समान, ऐसा व्यक्ति कौन है बताइए। तो नारद जी ने कहा इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हुए हैं भगवान श्री राम, उनसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है, उनसे अधिक गुणवान कोई नहीं है, उनसे अधिक चरित्रवान कोई नहीं है, वो है भगवान श्री राम। तो इस प्रकार नारद जी ने बहुत सारा उपदेश दिया, और हमने जैसे बताया कि रामायण उन्होंने सुनाया उनको सार रूप में, जिसका विस्तार किया वाल्मीकि जी ने। तो वाल्मीकि जी जो है वो तपस्या कर रहे थे तमसा नदी के पास, और उनके शिष्य भी थे नजदीक में भरद्वाज मुनि। तो ये तपस्या जब कर रहे थे तो उस समय स्नान करके निकले थे नदी से बाहर, तो उन्होंने दो पक्षियों को आपस में प्रेम करते हुए देखा, आलिंगन करते हुए देखा। उस समय क्या हुआ, एक शिकारी वहां से गुजर रहा था, उस शिकारी ने जो है बाण छोड़ दिया और उसमें जो मेल पक्षी थी, पुरुष पक्षी, उसकी मृत्यु हो गई, उसको मार दिया उस शिकारी ने। वाल्मीकि जी को बड़ा दुख हुआ, वाल्मीकि जी के हृदय में करुणा जागृत हो गई, और वाल्मीकि जी ने के मुख से एक श्लोक निकल आया जो कि अनुष्टुचंद यानी कि एक वैदिक मंत्र की तरह वो श्लोक बोल गए, और वो भी हैरान हो गए कि उनके हृदय से यह श्लोक कैसे प्रकट हो गया। तो क्या श्लोक में लिखा है, मां निषाद प्रतिष्ठा तम गमहा शाश्वती ही समाहा यत क्रौंच मिथुना देकम अवधि ही काम मोहितम। तो ने आप उसने कहा कि आपने क्या किया है, ये दो पक्षी आपस में प्रेम कर रहे थे, आपने बाण चला के इनको मार दिया, आपको कभी भी जो है सुख नहीं मिलेगा, कभी विश्राम नहीं कर पाओगे, आपने इतना घोर पाप किया है। इस तरह से उनके मुख से जो है शाप जैसा निकल गया और ये श्लोक भी निकल गया। तो ये सोच पड़ गया, अरे क्या बोल गया मैं। श्री संप्रदाय के जो वैष्णव है उसकी व्याख्या इस प्रकार से करते हैं, वो कहते हैं कि यहां पर शब्द आया मां निषाद, मां का मतलब यहां पर लक्ष्मी जी, निषाद का मतलब है जो दिन रात नारायण के साथ वास करती हैं। मां लक्ष्मी जो है वो दिन रात किसके साथ वास करती हैं, नारायण के साथ वास करती हैं, और साथ में उन्होंने क्या किया, नारायण ने क्या किया, भगवान श्री राम के रूप में रावण जैसे पशु की हत्या की है, यानी काम और क्रोध का वध किया है भगवान श्री राम ने, और रावण उसी का प्रतिनिधि है काम और क्रोध का, तो उसका वध किया भगवान श्री राम ने। तो इस प्रकार की व्याख्या वो करते हैं श्री संप्रदाय में। तो इस प्रकार जब तपस्या उन्होंने कर ली तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा कि आपका जो श्लोक का उच्चारण आपके हृदय से प्रकट हुआ है, क्योंकि साक्षात सरस्वती जी आपसे बड़ी प्रसन्न है, वही आपकी जीवा में बैठकर यह श्लोक बुलवाई थी आपसे, तो ये श्लोक की जो रचना हुई है आपसे, इसमें श्लोक भी है और उपश्लोक भी है। उपश्लोक का मतलब जिसको गाया जाता है, दोहराया जाता है, और श्लोक का मतलब जिसका यशोगान होता है, उत्तम श्लोक, जिसको भगवान को उत्तम श्लोक कहते हैं, जिनको जिनका गुणगान किया जाता है चुनिंदा श्लोकों से। तो इस प्रकार आप क्या करिए, आपसे प्रार्थना यह है कि आप श्लोकों में और उपश्लोकों में भगवान राम की महिमा का वर्णन करें, भगवान श्री राम का जो स्वभाव है, उनका हाव भाव स्वभाव, उनका चरित्र, उनकी लीलाएं सारी आपके हृदय में प्रकट हो जाएं। जैसे ही आप लिखना शुरू करेंगे तो क्या होगा, आपको लीला स्फूर्ति होगी। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा हुई और ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिला है आपको, सरस्वती जी का आशीर्वाद मिला है। तो इस तरह से आप भगवान राम के बारे में लिखना शुरू करें और आप जो लिखेंगे वो भविष्य के अनुसार लिखेंगे कि भविष्य में क्या क्या घटना होने वाली है। वाल्मीकि जी पहले से ही उसको लिख दें, तो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखा है वो फ्यूचर टेंस में लिखा है, इन द सेंस कि भविष्य में ये होगा। और जो जो आप लिखेंगे भगवान राम यथारूप उसी तरह की लीलाएं व्यक्त करेंगे। तो भविष्य में ऐसा होगा, भविष्य में ऐसा होगा, और भगवान श्री राम वैसा ही करेंगे जैसे कि आपने लिखा है, रामायण में लिखा है। तो इस तरह से भगवान वाल्मीकि जी ने उन्होंने रामायण लिखना शुरू किया और लगभग 24,000 श्लोकों में भगवान श्री राम की लीला का वर्णन किया वाल्मीकि जी ने। अब देखिए हनुमान जी के बारे में बताया जा रहा है, कई तरह के वेग होते हैं, मन का वेग होता है, वायु का वेग होता है और एक वेग गरुड़ जी का भी है और चौथा वेग है हनुमान जी का वेग, जो इन वेगों से कम नहीं है। ये हमारे वेगों की बात नहीं कर रहे हैं यहां पे, वाचो वेगम मनस्व क्रोध वेगम जीवा वेगम, हाँ उसमें जो मन का वेग है वो बहुत बहुत ही ज्यादा तेज होता है मन का वेग। बाकी वेग तो आप सहन कर लेंगे, समझ, मन का वेग सहन करना बड़ा मुश्किल है, मन बड़ा चंचल है। तो इसी तरह से हनुमान जी का जो वेग है उसको शांत करना बड़ा मुश्किल है। तो एक बार क्या हुआ, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उनके जो नित्य परिकर हैं उनको थोड़ा सा अहंकार हो गया और भगवान जो है गर्व के हंता है। अगर भक्तों को देखते हैं कि गर्व हो गया तो उसको बहुत जल्दी समाप्त करते हैं, कतई प्रसन्न नहीं है, पसंद नहीं है भगवान को कि भक्त गर्वित हो रहे हैं कि मैंने सब कुछ किया है, कर्ताम इति मन्यते अहंकार विमूढ़ आत्मा, नहीं मैं हूं सभी कारणों का कारण। तो ये भ्रम दूर करते हैं भगवान इस प्रकार का दंड देके। तो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत ही लाभ है, भगवान कृष्ण की जब शरण में जाएगा उसका कभी नुकसान नहीं होगा, हमेशा उसका शुभ होगा, हमेशा उसका मंगल होगा। गर्वित भी होगा तो भगवान ही स्वयं उसका ध्यान देंगे। मां शुचा, डरने की आवश्यकता नहीं, अम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्षिष्यामि मां शुचा, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। कितनी बड़ी कृपा है भगवान की, देखिए उसमें कष्ट तो होगा, सभी पापों से मुक्त करने का मतलब है कष्टों के लिए तैयार रहिए, पीड़ा होगी, रोग लगेगा, यही कृष्ण की कृपा है। समझे आप, सब कुछ अच्छा हो रहा है हमारे जीवन में, यह कृष्ण की कृपा नहीं है। खैर कष्ट पाने के कई और भी कारण होते हैं लेकिन यहां पे तो कृपा की बात की जा रही है। तो भगवान कृष्ण की कृपा यह है कि उन्होंने देखा कि अपने ही निजी परिकार जो है अहंकार के वशीभूत हो रहे हैं, यह उनको बिल्कुल ठीक नहीं लगा। तो यह मेरी जिम्मेदारी बनती है स्वामी होने के नाते कि इनके गर्व को मैं ठीक करूं। गरुड़ जी को बोला है, गरुड़ तीन लोगों का अहंकार हो गया, सत्यभामा जी को अपनी सुंदरता पे अहंकार हो गया और सुदर्शन चक्र को अहंकार हो गया कि मैं ही रक्षक हूं, हमेशा भगवान की उंगली में घूमता रहता हूं और मैं कृष्ण की रक्षा करता हूं। और गरुड़ जी को अहंकार हो गया, मुझसे तेज कौन उड़ सकता है, नहीं भगवान मेरे पीठ में बैठते हैं तभी तो पहुंच पाते हैं जल्दी। तो इस प्रकार का गर्व हो गया गरुड़ जी को हो गया। गरुड़ जी से कहा, ऐसा करो गरुड़, तुम जाओ और किम पुरुष लोक में हनुमान जी हैं उनको लेकर आओ। उन्होंने कहा ठीक है मैं लेकर आता हूं उनको, कोई समस्या नहीं है। अभी गया और अभी वापस आया, देखिए मेरा स्पीड। और सुदर्शन को कहा द्वारका की रक्षा करो, ऐसा कुछ करो कि कोई भी व्यक्ति जो है हमारे द्वारका धाम में प्रवेश ना कर पाए, बाहर खड़े हो जाओ बॉर्डर पे। ऐसी आज्ञा सुदर्शन को दी। सत्यभामा जी से कहा, हनुमान जी जब आएंगे तो फिर वो उम्मीद करेंगे कि साथ में मेरे सीता जी बैठे। सत्यभान ने कहा मुझ में कोई कमी है क्या? कोई समस्या नहीं है, आप चिंता क्यों करते हैं, मैं सीता जी से कम हूं क्या? तो सत्य बाबा जी हिले नहीं, तब उनको भी शिक्षा देनी थी। अब गरुड़ जी पहुंचे कहां पर, किम पुरुष लोके, हनुमान जी के पास। हनुमान जी से कहे चलिए चलिए, आपके लिए बुलावा आया, द्वारकाधीश आपको बुला रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि देखिए मैं अभी थोड़ी पूजा में व्यस्त हूं, पूजा कर लूं फिर आपके साथ चलूंगा। गरुड़ जी कहते हैं आप पूजा कर लो, ठीक है मैं आपको बिठा के अपने पीठ पे लेके जा रहा हूं, अपने पीठ पे आपको बिठा के लेके जाऊंगा, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, तुरंत पहुंच जाएंगे तत्काल एक ही क्षण में। हनुमान जी समझ गए कि क्यों गरुड़ जी को भगवान ने भेजा है। हनुमान जी ने विचार किया मैं तो सेवक हूं भगवान का, और ये भी सेवक है भगवान का, ये मुझे कैसे कह रहा है कि अपने पीठ पे बैठ जाओ, मेरे पीठ में बैठ जाओ। इनके पीठ में बैठने का अधिकार तो केवल भगवान विष्णु को, नारायण को है, कृष्ण को है, मैं कैसे बैठ सकता हूं? तो ये बात अब समझ में आ रही है कि क्यों गरुड़ जी को भेजा है द्वारकाधीश ने यहां मेरे पास। तो हनुमान जी ने एक धक्का मारा उनको, और कहां गिर पड़े, समुद्र में गिर पड़े गरुड़ जी। और हनुमान जी कुछ ही क्षणों में पहुंच गए द्वारका, ऐसी स्पीड में गए, और गरुड़ जी तो उठ ही नहीं पा रहे थे वहां से, समुद्र से बाहर, और तब तक पहुंच गए द्वारका। द्वारका जब पहुंचे सुदर्शन रोक लिया, हनुमान जी कहां जा रहे हैं आप? द्वारकाधीश ने मना किया है कि भीतर कोई प्रवेश ना करे, मुझे सेवा मिली है। हनुमान जी ने कहा देखो द्वारकाधीश ने मुझे बुलाया है, मुझे जाने दीजिए, और काफी विलंब हो गया है, पहले से बहुत देरी हो गई गरुड़ जी की वजह से, आप मुझे जाने दीजिए उनके पास। अगर नहीं, नो एंट्री नो एडमिशन नो परमिशन, नो परमिशन नो एडमिशन। तो उसके बाद फिर हनुमान जी ने क्या किया, सुदर्शन को उठाया और अपने दांतों के बीच में दबोच लिया, और उसके बाद हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी जब पहुंचे भगवान श्री राम के पास, तो वहां पर पहले तो सबसे पहले प्रणाम किया उनको राम के रूप में देख के, लेकिन उन्होंने कहा कि ये आपके साथ दासी कौन बैठी है, सीता जी कहां है? तो सबका अभिमान चूर चूर हो गया, सत्यभामा जी का भी, सुदर्शन का भी, और गरुड़ जी का भी। उसके बाद गरुड़ जी धीरे 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 सांस फूलता, उनका बहुत तेजी सांस फूल रहा था, और अपने पंखों को संभालते हुए धीरे धीरे वो भी पहुंचे द्वारका, और दृश्य देख कर ये कि हनुमान जी वहां पहले पहुंचे हुए देखकर हैरान हो गए। तो इस प्रकार, क्योंकि हनुमान जी जो है वो रामदूत है, दूत का मतलब होता है एम्बेसडर, किसी भी देश में जाने के लिए आपको वीजा की आवश्यकता पड़ती है, और ये वीजा देने वाला कौन होता है, एम्बेसी में जो बैठा हुआ एम्बेसडर है। तो हनुमान जी की जब तक कृपा नहीं होगी साकेत धाम नहीं जा पाए। तो जो राम के भक्त हैं उनको हनुमान जी के माध्यम से ही जाना पड़ेगा, अगर अयोध्या जाना है, साकेत जाना है, भगवान के धाम में जाना है। तो इस प्रकार हनुमान जी की बड़ी महिमा बताई गई है, खासकर सुंदरकांड में रामायण में हनुमान जी के बारे में बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। तो एक दफा क्या हुआ, हनुमान जी जो है उन्होंने जब भगवान श्री राम को वापस राम राज्य की स्थापना दोबारा कर दी, उन्होंने वापस आ गए अयोध्या, लंका के ऊपर विजय प्राप्त करके रावण का संहार करके वापस जब पहुंचे अयोध्या, तो हनुमान जी तो कहने लगे कि जहां आप हैं वहां मैं हूं, मेरा कोई परिवार नहीं है, ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, रियल अखंड ब्रह्मचारी थे हनुमान जी, लेफ्ट एंड राइट आगे पीछे कोई नहीं था। हनुमान जी ने कहा मेरे आपके अलावा तो कोई है नहीं, तो मैं कहां जा सकता हूं, मुझे तो यही रहना पड़ेगा अयोध्या में। तो हनुमान जी गए नहीं, हनुमान जी भी सेवा करने लगे अयोध्या में। तो एक समय क्या हुआ, सीता जी को देखा कि अपने जो है मांग में सिंदूर लगा रही है, और कि आप ये क्या कर रही हैं, इस सिंदूर लगाया है मैंने क्योंकि इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, श्री राम बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत अच्छा है तो मैं भी ये करता हूं। पूरा सिंदूर उन्होंने अपने शरीर में लगा लिया। अब क्या है, कोई भी सेवा होती थी वो पकड़ लेते थे हनुमान जी, कभी कुछ लोगों का होता है आदत, ये सेवा से निकालो दूसरी सेवा पकड़ लेंगे, दूसरी सेवा से निकालो तीसरी सेवा पकड़ लेंगे, जैसे हमारे अक्षय केशव प्रभु है, वो भी ऐसे ही हमारे दिल्ली मंदिर में, उनको एक सेवा से हटाओ अपने आप तुरंत दूसरी सेवा में लग जाएंगे, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने सोचा भी था उनको हनुमान जी का रोल दिया जाए रामलीला में, लेकिन उसके लिए फिर रिहर्सल करना पड़ता है. एनीवे तो ये सेवा छोड़ते ही नहीं था हनुमान जी. अब ये क्या हुआ, बाकी सबकी सेवाएं भी धीरे धीरे इनके पास आने लगी, लक्ष्मण जी की, भरत जी की, शत्रुघ्न की. अब ये सब बड़ा चिंता करने लगे, आपस में इष्ट गोष्ठी हुई. स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स भी होता है ना, ये होता है कि नहीं होता, सब जगह होता है, यहां पे भी होता है. तो वो लोग भी डिस्कस कर रहे थे आपस में, सारी सेवाएं हमारी छीन ली, हमको सेवाओं से वंचित कर दिया, अब हम लोग कैसे करें सेवा श्री राम की. समस्या खड़ी हो गई, एक एक करके क्या हुआ, सारी सेवा सबने ले ली हनुमान जी वापस. हनुमान जी सेवा से एकदम से मुक्त हो गए, यानी कि सेवा थी नहीं उनके पास, अब बहुत परेशान हो गए. श्री राम के पास गए, उन्होंने कहा कि प्रभु मैं तो बहुत चिंता में, मैं बिना सेवा के रह नहीं सकता, मैं तो क्या करूं मैं. उन्होंने कहा आपकी सारी सेवा ले ली उन्होंने. अच्छा ये सब भी चल रहा है यहां पर, स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स तो देखिए हर जगह रहेगा, स्पिरिचुअल होना चाहिए, मटेरियल होना जरूर चाहिए. महाभारत में पॉलिटिक्स था, लेकिन उस पॉलिटिक्स के केंद्र बिंदु कौन थे, भगवान श्री कृष्ण थे. पॉलिटिक्स में भी बड़ा आनंद आता है अगर कृष्ण बीच में हो तो. नहीं, जिस समाज वैश्व समाज में इश्यूज ना हो, एजेंडा ना हो, तो फिर सेवा का आनंद आएगा कहां से. ये बहुत जरूरी है रोचक बनाने के लिए भक्ति को. तो भक्ति को रोचक बनाया जाता है इस तरह से, कोई ना कोई इश्यू खड़ा करके. तो ये इश्यू खड़ा हो गया कि सारी सेवा छीन ली गई, हनुमान जी की सारी सेवा छीन ली. हनुमान जी ने कहा मेरी सारी सेवा छीन ली, मैं क्या करूं. तो राम ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं विश्राम जब जब करता हूं उबासी लूंगा, तुम बाहर बैठ के चुटकी बजाते रहना. तो इस तरह से देखिए हनुमान जी को देखा, हैरान हो गए सब लक्ष्मण भरत जी, यार ये तो कमाल है यार, कहीं ना कहीं से सेवा पकड़ ही लेते. देखिए भगवान राम ने एक सेवा दी थी इनको, चुटकी बजाने की सेवा. एक बार एक ज्वेलर आया, अयोध्या में था वो, और बहुत सुंदर हार लेके आया. और जो हार लेकर आया उसमें बहुत सारे फर्स्ट क्लास जेम्स, रूबीज, बढ़िया बढ़िया चीजें थी, रत्नों से जड़ित था वो हार. और हार जब लेके आए तो फिर क्या हुआ, तो भगवान श्री राम ने सीता जी को दिया, और सीता जी ने फिर क्या किया, हनुमान जी को भेंट की. हनुमान जी ने जो है उसको लिया और देखने लगे बड़े गौर से, इसमें राम दिख रहे हैं कि नहीं. तो एक एक करके वो तोड़ने लगे और चबाने लगे और चबा के खोलने लगे. वो ज्वेलर बोला, ज्वारी बोला कि क्या कर रहे भाई, इतना महंगा अगर हार तुम जो है चबा के खा रहे हो. मैं तो ये देख रहा हूं इसमें सीताराम है, सिया राम है कि नहीं, कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए फेंक रहे, तो पत्थर के समान है, फिर मेरा क्या फायदा इसका. तो फिर बोलते हैं कि अच्छा तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे कि तुम्हारे हृदय में बैठे सब जगह है, जहां मतलब वो तो कहते हैं सब जगह है, हाँ सब जगह है, मुझे तो हर जगह राम दिखते हैं, तुम्हारे हृदय में भी है, हाँ हृदय में भी है. तब हनुमान जी ने अपना हृदय खोल के दिखाया और सीताराम का दर्शन कराया. तो इस तरह के हनुमान जी अनन्य भक्त है. ये अगर सेवा करने का भाव अगर हमें स्वीकार करना है, या सेवा करने का जो भाव होना चाहिए वो सीखना है, तो हनुमान जी से सीखना चाहिए. सेवा किस तरह से की जाती, सेवा के मतलब एक्सपर्ट है, यानी कि कहने का मतलब है जब हमें कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की जो सेवा है वो दास्य भाव से शुरू होती है गौर लीला में, वो दास्य भाव की जो सेवा है हनुमान से सीखनी चाहिए. किस तरह से हनुमान जी सेवा करते हैं राम की, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप. तो इस प्रकार ये वर्णन किया जा रहा है. तो अब जब लक्ष्मण की बात की जाएगी, तो लक्ष्मण जी जो है वो रामानुज है. लक्ष्मण जी क्या है, रामानुज है. यानी कि रामानुज का मतलब है रामानुज की शरण लेंगे तो कामानुज की शरण लेने की आवश्यकता नहीं. रामानुज का मतलब है नित्यानंद प्रभु, यानी अखंड गुरु तत्व है लक्ष्मण. और श्री भक्ति सिद्धांत से ठाकुर कहते हैं कि लक्ष्मण जी के अवतार है, लक्ष्मण जी नित्यानंद प्रभु के रूप में ही आए हैं. तो लक्ष्मण जी रामानुज हैं. और इसी तरह से जो भरत जी हैं, भरत जी यानी शत्रुघ्न है, वो भरत अनुज हैं. तो भरत जी के माध्यम से, तो एक दफा क्या हुआ, ये भगवान राम ये सब कैसे प्रकट हुए, एक बार महाराज दशरथ ने यज्ञ करने का फैसला किया वशिष्ठ मुनि से परामर्श करके, और साथ में एक उनके थे ऋषि श्रृंग थे, उनसे परामर्श करके उनकी सहायता से उन्होंने यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ भी किया और बाद में पुत्र की कामना करते हुए पुत्र की इच्छा से उन्होंने एक यज्ञ किया था। तो यज्ञ किया तो उसमें यज्ञ में कलश रखा गया था और कलश के भीतर, वो कलश बहुत बड़ा था, बहुत ऊंचा था वो कलश, और उसके भीतर क्या था, खीर था, लगभग 50 लीटर खीर होगा उसके अंदर। अब भगवान जब प्रकट हो गए उस कलश के भीतर तो उन्होंने कहा, ऋषि ने कहा कि आप इसका वितरण कर दीजिए अपनी पत्नियों में, तो 50 लीटर खीर कैसे खाएंगे, ये सब संभव ही नहीं है। तो 50 लीटर खीर, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें ऋषि श्रृंग की सहायता लेनी पड़ेगी, उनसे सुझाव लेते हैं। तो ऋषि श्रृंग ने क्या कहा, उन्होंने विचार प्रकट किया कि अगर भगवान जो है महान है, महतो महियान अनियोर अनियान, और बड़े से बड़े हैं जो तो छोटे से छोटे भी हैं, तो छोटे से छोटे भी हो सकते हैं वो, तो वो कलश उन्होंने अब ऋषि श्रृंग ने अपने हाथ में लिया और अपने हाथ में जैसे ही उस कलश को लिया तो उनके हाथ के आकार का हो गया वो कलश, यानी कि खीर भी, खीर की मात्रा भी कम हो गई। तो उन्होंने कहा कि आप खीर बांट दीजिए, तो 50% माता कौशल्या को दे दिया गया और उसके बाद बाकी पत्नियों में बांट दिया गया, और इस प्रकार जो है फिर बाकी पत्नियों को भी दिया गया। और इसी तरह से सबने जब खीर ग्रहण किया, और उसके बाद सुमित्रा जी को 2 बार वो खीर प्राप्त हुआ, इसलिए उनके जुड़े पुत्र हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और भरत जी प्रकट हुए माता कैकेयी से और माता कौशल्या से श्री राम प्रकट हुए। इस तरह से ये देखा जाता है कि ये चतुर्विध विस्तार जो है, प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुए हैं। विष्णु तत्व है, नरलीला के द्वारा मर्यादा की स्थापना कर रहे हैं, पूरे रामलीला में आप कहीं भी देखेंगे मर्यादा की स्थापना हो रही है, और कृष्ण लीला का मतलब कोई मर्यादा की स्थापना नहीं हो रही है, लीला पुरुषोत्तम है, लीला का आनंद ले रहे हैं। उनसे आप मर्यादा की आशा बिल्कुल मत करिए, किनसे, कृष्ण, क्योंकि मर्यादा भंग करना है, वो कह ही तो रहे कौन त्या प्रति जाना ही नाम है भक्त्या प्रणश्यति, एक कुंती पुत्र तुम घोषणा करो क्योंकि मैं मर्यादा का पालन नहीं करता हूं, तुम अगर घोषणा करोगे तो मैं फिर उस मर्यादा की रक्षा कर सकता हूं, लेकिन स्वयं मैं मर्यादा का भंग करने वाला हूं क्योंकि मैं लीला पुरुषोत्तम हूं। तो इस तरह से भगवान श्री राम मर्यादा की स्थापना करते हैं कई समय देखेगा, देखिए भाई के रूप में भी मर्यादा की स्थापना की उन्होंने, एक पुत्र के रूप में मर्यादा की स्थापना की, महाराज दशरथ ने केवल इशारा किया उनको और भगवान राम जाने के लिए तैयार हो गए 14 वर्षों के लिए वन में, चूं तक नहीं किया, ना तर्क किया, ना वितर्क किया, ना प्रश्न किया, ना जिज्ञासा की, निकल पड़े चुपचाप। नहीं, ये मर्यादा की, मर्यादा का पालन है, और भाइयों के बीच में कैसे प्रेम होना चाहिए इस मर्यादा का पालन किया। आज तो भाइयों के बीच में झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं प्रॉपर्टी को लेके, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े करोड़पति लोग, खरबपति लोग हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं और दूसरे को तो पूरा ही दबोच लिया, उसको तो समाप्त ही कर दिया, खत्म ही कर दिया, ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में। लेकिन भगवान राम दिखा रहे मर्यादा की स्थापना, भाइयों के बीच में कितना प्रेम होना चाहिए, आपस में कितना प्रेम था इन भाइयों के बीच में, चूं तक नहीं किया। भरत जी जो है वो अयोध्या के बाहर रहने लगे, बोलते राज सिंहासन में नहीं बैठूंगा मैं, ना अयोध्या के पर राज्य करूंगा, मंत्रियों के द्वारा होगा जो होगा, भगवान श्री राम ही राजा रहेंगे। बताते नंदीग्राम में और अयोध्या के बाहर वो कुटिया बना के वहां रहने लगे, कोई आसक्ति नहीं है सिंहासन से। उन्हें यह सोचा, अरे भाई तो चले गए, वाह राज सिंहासन मेरा, राज्य मेरा, सारी संपत्ति मेरी हो गई। एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने शरीर छोड़ा हाल ही में, और स्वाभाविक है कि उनके पुत्र को सारी संपत्ति मिल गई, सारा बिजनेस मिल गया, और जिस दिन उनके पिता की मृत्यु हुई उसके अगले दिन ही शुरू हो गई पार्टी घर में, शराब शुरू हो गया, सब कुछ शुरू हो गया, और मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे जो है सारी प्रॉपर्टी उनके नाम पर पूरी तरह से हो जाए। यह है, तो यहां पर देखिए मर्यादा की स्थापना, भरत जी को बिल्कुल रंच मात्र भी आ सकते नहीं है। तो इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की मर्यादा की स्थापना की है भगवान ने भरत जी के माध्यम। और शत्रुघ्न देखिए, दास दासानुदास, भगवान राम निकट ही है कि परिवार में है कि घर में है, लेकिन फिर भी उनको डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर रहे, किसके माध्यम से कर रहे हैं, अपने काउंसलर के माध्यम से अप्रोच कर रहे हैं। तो काउंसलर्स को बड़ी खुशी होती है जब ये सुनते हैं प्रसंग कि शत्रुघ्न जो है हमेशा भरत जी के माध्यम से चलते थे। वो ये उदाहरण देते हैं भरत जी से, शत्रुघ्न से शिक्षा लो। कभी उन्होंने सीधा भगवान राम को अप्रोच नहीं किया, हमेशा अपने काउंसलर के थ्रू गए, यानी भरत जी के थ्रू गए। ये विधि है। तो इस तरह से मर्यादा की स्थापना होनी चाहिए। मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं किया गया रामलीला में। तो इस प्रकार, और आसक्ति पत्नी से आ सकती या पति से आ सकती, उसका कारण, उसका परिणाम क्या हो सकता है, उसका अंजाम क्या हो सकता है। नहीं, श्रीमद् भागवत में एक जगह लिखा, मुझे याद नहीं आ रहा कहां पर, शायद पांचवें स्कंध में लिखा है, जैसे रावण जो है सीता जी का अपहरण करके ले गया, ग्रहण कर लिया उसने, तो ऐसे में तो श्रीमद् भागवत कहता है कि ऐसे व्यक्ति को तो उसके पीछे पड़ के उसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वह आत्मघाती है, वो क्या है, एग्रेसर है, आतताई है। आतताई की हत्या होना जरूरी है, उसको मारना बहुत जरूरी है। छह प्रकार के आतताई होते हैं, उसमें से एक आतताई कौन है जो किसी और की पत्नी को अपहरण करता है। तो रावण ने ऐसा किया, तो उसकी हत्या करना बहुत जरूरी है, और रामायण से हम सीखते हैं। लेकिन फिर श्रीमद् भागवत कहता है अगर कोई इन सब पशुओं से बचना चाहता है तो अच्छा है कि ब्रह्मचारी रहो, फिर तो यह समस्या ही नहीं है, नो टेंशन। लेकिन भगवान राम ने दिखाया एक पत्नी व्रत, तो एक पत्नी व्रत अगर कोई रखता है तो वो भी एक तरह का ब्रह्मचारी है, जिसको गृहस्थ ब्रह्मचारी कहते हैं। एक पत्नी व्रत, आंखें केवल सीता जी की ओर थी, बस लेफ्ट में नहीं राइट में नहीं देखते थे वो, ना टॉप में, और कहीं नहीं, किसी को नहीं, और सीता जी का भी सारा ध्यान भगवान श्री राम के चरणों में था। इसे दक्षिण भारत जब गए चैतन्य महाप्रभु, रामदास नाम के एक भक्त थे, वैष्णव थे, राम के बड़े ही अनन्य भक्त थे, और वो क्या है, अष्टकाली लीला स्मरण जिस तरह से होता है, सर लीला स्मरण करते हुए अपना भजन करते थे, राम नाम लेते रहते थे, और दैनिक कार्य में लगे रहते थे, लीला स्फूर्ति होती रहती थी उनको। तो लीला स्फूर्ति हो रही थी, लीला स्मरण कर रहे थे कि रावण जी जो है सीता जी को लेके चले गए हैं, अपहरण कर लिया है, और राम अब सीता जी को क्या हो रहा, राम से वियोग हो रहा है, राम को सीता जी से वियोग हो रहा है, और एकदम से आंखों से आंसू बहाने लगे, रावण लेके चला गया, सीता जी को लेके चला गया, हमारे माता को ले गया है, दुष्ट राक्षस, इस तरह से वो क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे। उसी में चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंच गए। चैतन्य महाप्रभु, क्या हुआ क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु चल गए, उनको लगा कि ये इतनी जल्दी कन्विंस होने वाले नहीं है। फिर वहां पर कुछ संत महात्मा लोग जो है कथा कर रहे थे कूर्म पुराण से, और कूर्म पुराण में देखा लिखा है कि नहीं नहीं ये तो सीता जी को छू भी नहीं सकता रावण, ये तो छाया सीता को लेके गया है। तो उन्होंने कहा कूर्म पुराण फिर उनसे ले लिया, उनसे एक कॉपी ले ली, और कूर्म प्रमाण लेकर, कूर्म पुराण लेके फिर वो रामदास के घर पे गए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा देखो ये शास्त्र प्रमाण है, अब तो तुम विश्वास करोगे, छाया सीता थी वो, रावण तो छू भी नहीं सकता है सीता को। तो वो भक्त इतना खुश हो गया चैतन्य महाप्रभु से। नहीं, और उसी तरह मुरारी गुप्त जो कि साक्षात हनुमान जी हैं, मुरारी गुप्त को कन्विंस कर दिया चैतन्य महाप्रभु, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ही इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकार्नेशन, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, माम एकम शरणम व्रज, ये सब कन्विंस करते हैं मुरारी गुप्त, कन्विंस होना पड़ा होंगे, चैतन्य महाप्रभु कन्विंस कर रहे हैं, अब क्या करें। लेकिन एक बोला है, अंग्रेजी में बड़ी अच्छी कहावत है, मैन कन्विंस अगेंस्ट हिज विल इज स्टिल ऑफ द सेम ओपिनियन, मैन कन्विंस अगेंस्ट हिज विल इज स्टिल ऑफ द सेम ओपिनियन, यानी कि आपके विल के अगेंस्ट अगर आपको मैं कन्विंस कर रहा हूं, यकीन दिला रहा हूं, तो वास्तव में आप फिर भी स्वीकार नहीं करेंगे हृदय से। तो स्वीकार नहीं किया वास्तव में मुरारी गुप्त ने, और जब घर गए अपने इष्ट का दर्शन किया, पूरी रात रोने लगे, वो सो नहीं पाए। और जब अगले दिन आए चैतन्य महाप्रभु, कैसे महाप्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके चरणों में अपराध नहीं करना चाहता हूं, मैं बहुत दुखी हूं, कल रात को मैं सो नहीं पाया हूं, अपने इष्ट के सामने मैं बैठा रहा, आपने मुझे कल कहा कृष्ण भक्ति को अपनाने के लिए, स्वीकार करने को, मैंने पूरा प्रयास किया, पूरी कोशिश की, मैं आपकी अवज्ञा नहीं करना चाहता हूं, मैं अपराध नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा ध्यान बार बार भगवान श्री राम के चरणों में जा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम तो रामदास हो, हनुमान हो। तो इस प्रकार मर्यादा की स्थापना जो है रामायण के माध्यम से, यानी भगवान श्री राम ने मर्यादा की स्थापना की। और सबसे बड़ी बात है, जिसके ऊपर श्री राम की कृपा हो जाए, लक्ष्मण जी की कृपा हो जाए, इस संसार की कोई सुविधा की आवश्यकता नहीं होती है, इस संसार में रहने के लिए संघर्ष करने के लिए और कोई साधन की आवश्यकता नहीं होती है। जिस तरह से वानरों ने क्या किया, बड़े बड़े जो है शिलाएं उठाई, पत्थर पहाड़ उठाए, पेड़ उखाड़ के ये फेंकने लगे रावण की सेना के ऊपर, उनके पास F-16 नहीं था, फाइटर प्लेन नहीं था, उनके पास मिसाइल नहीं था, उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था, वो वानर थे, यानी कि जीरो बजट आर्मी थी भगवान श्री राम की, एक पैसा खर्चा नहीं किया उन्होंने। और हमारे इंडियन आर्मी का बजट देखिए कितना है, कितना पैसा खर्चा होता है, फिर भी मारे जाते हैं उसमें शूटिंग में नहीं। लेकिन भगवान राम की आर्मी इस तरह की है, एक पैसा भी उसमें गंवाना नहीं पड़ा, क्योंकि स्वयं राम और लक्ष्मण जो है वो थे, बस उनके सहारे, उनके आश्रय लेकर, उनके माध्यम से जो है लंका के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, केवल वानरों के माध्यम से। देखिए कितना बड़ा इंसल्ट है, कितना बड़ा अपमान है। रावण इतना शक्तिशाली व्यक्ति जिसने बड़े बड़े देवी देवताओं को अपने पलंग के नीचे बांध के रखा हुआ था, जानते हैं आप, सारे के सारे भयभीत, साक्षात मृत्यु के देवता को भी बांध के रख दिया उन्होंने, और कौन बचा फिर, यानी कि ब्रह्मा जी को छोड़कर, शिव जी को छोड़कर, विष्णु को छोड़कर बाकी सारी देवी देवता भयभीत थे रावण से। और रावण, रावण के पास सारी शक्ति थी, सारी सिद्धियां उसके पास थी, लेकिन भगवान राम ने हराया कैसे, वानरों के माध्यम से। तुम्हारे लिए तो वानर ही काफी है, बंदर ही हरा देंगे तुम्हें, कितना बड़ा इंसल्ट है देखिए। क्यों? क्योंकि उन वानरों के ऊपर भगवान श्री राम की कृपा थी, लक्ष्मण जी की कृपा थी। तो इस प्रकार रावण और कुंभकर्ण जो वैकुंठ के द्वारपाल थे जय विजय, और रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए और भगवान राम के साथ युद्ध किया उन्होंने। तो इस प्रकार पूरे रामायण में हम देखते हैं कि मर्यादा की स्थापना हो रही, और यहां तक कि प्रजा को खुश करने के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए भगवान राम ने क्या किया, सीता जी को तक न्योछावर कर दिया एक धोबी के कहने पर। नहीं, कितनी बड़ी बात है देखिए, क्या मर्यादा का पालन किया उन्होंने, प्रजा, राजा होने के नाते क्या कर्तव्य होना चाहिए आपका, उस समय कोई परिवार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब प्रजा है। जैसे कोई आर्मी में होता है तो क्या जाता है, वो जाता है फ्रंट में, जाता है बॉर्डर में जाता है, वहां टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस पर खड़े हुए हैं, इंडिया चाइना टिबेटन बॉर्डर, और वहां पे खड़े हुए एकदम तैनात हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, तो त्याग करते हैं, सिर्फ क्षत्रिय त्याग करता है, प्रजा के लिए त्याग करता है राजा होने के नाते। और सीता जी को जो है फिर बैनिश कर दिया, उनको बोल दिया कि जाओ वन में जाओ, लक्ष्मण जी को कहा जाओ छोड़ के उनको। तो यही चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके क्यों गए, इसी कारण से, ये भी कारण है। आप जब जाएंगे नदी मंडल परिक्रमा में, जब पहुंचते मोदक त्रुम द्वीप, तो वहां पे स्वयं आए थे सीता जी, आए थे राम जी, आए थे स्वयं। तो भगवान श्री राम ने कहा कि भविष्य में कलयुग में मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊंगा और संकीर्तन करूंगा, और सीता जी को कहा उन्होंने कि वास्तव में जब मैं तुम्हें त्यागूंगा, उन्होंने कहा आप मुझे त्याग देंगे, हाँ, जब विरह हुआ तो आपका प्रेम मेरे लिए और बढ़ेगा, और अधिक होगा, तो आप क्या करेंगे फिर, मैं क्या करूंगा, आपकी मूर्ति बना के आपकी पूजा करूंगा इस रामलीला में, लेकिन गौर लीला में क्या करूंगा, इसका फल तो भुगतना पड़ेगा मुझे। भगवान भी देखिए, ऐसा लगता है उनके ऊपर भी कोई कर्म का बंधन है नहीं, ये भगवान की लीला है। तो भगवान कहते हैं जब मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊंगा, संन्यास लेके मैं चला जाऊंगा, इस बार, पिछली बार मैंने तुम्हें भेज दिया था, इस बार मैं जाऊंगा घर छोड़कर, और उस समय तुम क्या करोगे, मेरे शिव वगैरह की पूजा करोगी, आराधना करोगी, और मुझसे विरह तुम महसूस करोगे। लेकिन दोनों ही केसेस में तुम्हारा प्रेम मेरे लिए अधिक से अधिक बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से जो है ये लीलाएं आपस में कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, समझेगा, ये सारी लीलाएं देखिए, जो नित्य परिकर हैं, जो कृष्ण लीला में रहे हैं, राम लीला में रहे हैं वो कृष्ण लीला में भी रहे, और जो कृष्ण लीला में रहे वो गौर लीला में रहे, ये सारे इंटरकनेक्टेड है। तो इस प्रकार ये लीलाएं अनंत लीलाएं भगवान श्री राम की, जो कि इस रामायण में स्वयं वाल्मीकि जी ने बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, हम सबको मौका दिया कि भगवान श्री राम का हम लोग स्मरण कर पाए, उनकी लीलाओं का स्मरण कर पाए, उनकी लीलाओं के बारे में हम सुन पाए, और हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। भगवान राम की लीला से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, भगवान कृष्ण की लीला से सीखने के लिए कम है, क्योंकि वो भगवद गीता से सीखने को मिल जाएगा कि हमें क्या करना है। रास लीला आप कर नहीं सकते हो, गोवर्धन लीला आप कर नहीं सकते हो, जल केली भी आप कर नहीं सकते हो, माखन चोरी भी आप कर नहीं सकते हो, कुछ नहीं कर सकते आप। कृष्ण की लीला को देखकर आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि कृष्ण तो कृष्ण है। पूतना का वध भी नहीं कर सकते आप, तृणावध का वध नहीं कर सकते, वसासुर का वध नहीं कर सकते आप, चट्टासुर का वध नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। भगवद गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार सकते, वो जरूर हम कर सकते हैं। भगवद गीता की शिक्षा हमारे लिए है नहीं, लेकिन उनकी लीलाएं हमारे लिए नहीं है। विश्व रूप नहीं दिखा सकते आप। जैसे हमारे रसराज प्रभु हैं, उन्होंने एक ड्रामा किया था, और उसमें दो लोग आते हैं, वो चोर उचके होते हैं, और वो भी तलाश कर रहे हैं भगवान की। तो एक बहुत बड़े संत होते हैं, उनके पास आते हैं, बोलते हैं तुम भगवान हो? बोलते हैं हाँ मैं भगवान हूं। तो रसराज प्रभु एक्टिंग कर रहे हैं उसमें, बोलते ठीक है दिखाओ अपना विश्व रूप। बोलते ठीक है वीडियो ऑन करो विश्व रूप का भाई आगे। अब वो इतफाक से क्या हुआ, वीडियो ऑन ही नहीं हुआ पीछे विश्व रूप का, और एक टेक्निकल फॉल्ट है लगता है इसमें कुछ, विश्वरूप का वीडियो क्यों नहीं आया पीछे। तो इस तरह के भगवान बनने का कोई फायदा नहीं है। भगवान आते हैं तो भगवान अपने ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं कहीं ना कहीं। नहीं, समुद्र के ऊपर क्रोधित हो गए जब वो समुद्र पार करके उनको जाना था और समुद्र साथ नहीं दे रहे थे, तो समुद्र के ऊपर भगवान क्रोधित हो गए। तो भगवान ने कई जगह पे, श्री राम ने भी ऐश्वर्य अपना दिखाया, चैतन्य महाप्रभु ने अपना ऐश्वर्य दिखाया, लेकिन अधिकांश भगवान राम जो है एक नर के रूप में, एक साधारण नर के रूप में मर्यादा की स्थापना करते हैं, और उस मर्यादा को अपने जीवन में हम लोग उतार सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं हम लोग, तो करिए। इस तरह से भगवान राम की लीला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षाप्रद है बहुत। वो सारी शिक्षाएं हमारे जीवन में आ जाएंगी तो बहुत अच्छा है। और हमारे गुरु महाराज ने तो राम दरबार की स्थापना की है ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में, जिसको बड़ा मंदिर कहते हैं। अब तो बहुत सारे बड़े मंदिर हो गए हैं, लेकिन जो भी है प्राचीन बड़ा मंदिर श्री श्री राधा पार्थ सारथी, प्राचीन तो हमेशा वही रहेगा। महाराज कहते हैं दैट्स अ मदर टेम्पल, सभी मंदिरों की जननी है श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर, और सब वहीं से जन्म लिए हैं, हम सभी वहीं से प्रकट हुए हैं, या उसके विस्तार हैं, एक्सपेंशन से अंशांश विस्तार है, एक्सपेंशन है। तो श्री श्री राधा पार्थसारथी दिल्ली में ही उनका जन्म हुआ, नहीं जयपुर में, जयपुर में तो बनाया गया था लेकिन स्थापना तो यहां पर हुई, प्राण प्रतिष्ठा यहां पर, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है वही उसका जन्म स्थान, वहां तो बनाया गया, बनाने से थोड़ा वहां भगवान आ गए। भगवान तो इधर आए थे, और सबसे पहले श्री श्री राधा पार्थसारथी की स्थापना श्रील प्रभुपाद जी ने 21 नवंबर 1972 को की थी प्रातःकाल 8 बजे आनंद निकेतन में। आनंद निकेतन या सत्य निकेतन? आनंद निकेतन। आनंद निकेतन जानते कहां? मोतीबाग की बिल्कुल निकट है, मोतीलाल नेहरू कॉलेज है उसके बहुत निकट है आनंद निकेतन। तो आनंद निकेतन में कोठी में श्री श्री राधा पार्थसारथी की स्थापना श्रील प्रभुपाद जी ने की आज से 21 वर्ष पूर्व। ये तो उद्घाटन का दिन है, 21 वर्ष नहीं सॉरी ज्यादा हो गया 1972। और उसके बाद फिर आनंद निकेतन से श्री श्री राधा पार्थसारथी बंगाली मार्केट गए थे टोडरमल लेन, और वहां तो राधा पार्थसारथी को इमारत से बाहर फेंक दिया गया था मकान मालिक के द्वारा, खैर उनको कौन फेंक सकता है, लेकिन उनको अलग कर दिया गया उस बिल्डिंग से। और बंगाली मार्केट टोटल मल लेन से फिर पहुंचे लाजपत नगर, लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट है वहां पे वो बिल्डिंग है जहां पे राधा पार्थसारथी की स्थापना हुई फिर वहां पे दोबारा। और उसके बाद ग्रेटर कैलाश में पहुंचे M119 ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 जहां हम लोग जुड़े थे, मैं जुड़ा था M119 ग्रेटर कैलाश। राधा पार्थसारथी का चेहरा बहुत बदल गया है, पहले थोड़े कमजोर लगते थे अब हेल्दी हो गए, आपको पुराना फोटो दिखाएंगे राधा पारसारथी का, तो पहचानेंगे नहीं आपकी यही राधा पारसारथी है, सारा चेंज हो गया। तो राधा पारसारथी M119 में वहां बिल्डिंग में थे, और वहीं से फिर हमारे गुरु महाराज ने प्रयास करना शुरू किया एक लैंड लेने के लिए दक्षिण दिल्ली में, क्योंकि प्रभुपाल ने कहा कि दक्षिण दिल्ली में हमारे पास एक मंदिर होना चाहिए, बड़ा मंदिर होना चाहिए। तो भारत तैयार प्रयास कर रहे थे, बहुत प्रयास कर रहे थे, और कुछ जमीनें दिखाई गई थी उनको, उसमें से एक जमीन साउथ दिल्ली में जहां पर अभी मंदिर है हमारा, वहां के देखा वो पूरा एक पहाड़ी इलाका जैसे था, पूरा गार्बेज वहां पे लोग डाला करते थे, गड़ी के लोग, और कई मोर नाचा करते थे वहां पे, समझते हैं आप मोर नाचने के बाद, तो कई मयूर नाचते थे वहां पे, कुकू नहीं करते थे, बिना आवाज किए मोर नाचते थे। तो वहां पे बिल्कुल रॉकी एरिया था वो, और वो लैंड बैरन लैंड था, बंजर जमीन थी, और उसको कोई खरीद नहीं रहा था, उसका क्या किया जाए किसी को पता नहीं था। और डीडीओ को अप्रोच किया था महाराज ने, महाराज घंटों घंटों डीडीओ की बिल्डिंग में, विकास मार्ग जो वहां पे बिल्डिंग है डीडीओ का जो मेन हेड ऑफिस है, वहां महाराज बैठा करते थे सुबह से शाम तक, कई दिनों तक, कई सालों तक। और लगभग 92 में जो है वो जमीन हमें मिली थी ईस्ट ऑफ कैलाश, और फिर वहां मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 92 में हम लोग शिफ्ट हो गए, वहां पे एक मेक शिफ्ट टेम्पल बना था, छोटा सा टेम्पल बना था, राजा पारसारथी जी वहां शिफ्ट हो गए, और उसी मंदिर में हम लोग जाके रहने लगे। और पीछे कंस्ट्रक्शन चलता था, कंस्ट्रक्शन की आवाजें आती थी, और बम का विस्फोट होता था, कई बार पत्थर उड़ के हमारे आश्रम के अंदर भीतर घुसते थे, और एसिड्स भी जो लगाए जाते थे उस लोहे के ऊपर लगाया जाता था, तो वो एसिड के फ्यूम्स भी कई बार ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश करते थे। और इस तरह से कंस्ट्रक्शन चलता रहा, और महाराज ने पहली बार जो डोनर मिले सबसे बड़े वो थे हिंदुजा जी। तो हिंदुजा जी ने पहले डोनेट किया था, सबसे पहले वही डोनर थे हमारे दिल्ली के। तो इस प्रकार महाराज ने बहुत लोगों को जोड़ा, धीरे 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 कई भक्त लोग जुड़ते गए। और समय सब लोग यही बोल रहे थे कि यहाँ पे कौन आएगा, ये तो भेड़ स्थान है, सामने गढ़ी है, पीछे पूरा जो है स्लम एरिया है, और ये रॉकी एरिया, यहाँ ये पिछड़ा इलाका है बहुत साउथ दिल्ली का, कौन आएगा। माने का सब आएंगे, मंदिर तो बनने दो। इसी तरह से बोला गया था वहां पे राधाराज बिहारी जी के लिए भी झूम है, वहां भी सब यही बोलते थे यहाँ कौन आएगा, ये तो रिमोट एरिया है बॉम्बे का, यहाँ कौन आएगा। सब आने लग गए, प्रभुपाद ने कहा देखना सब आएंगे यहाँ पे, पूरी बंबई वहां पे आती है। तो इस तरह से मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, धीरे धीरे जो है लोगों को इकट्ठा किया गया, और नए नए लोग मिले, जुड़े नए नए लोग जुड़े, और लोगों ने अपने डोनेशन के द्वारा, सेवा के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में इस मंदिर का उद्घाटन किया, 1998 में, और कब किया, रामनवमी के दिन, यानी कि परसों रामनवमी के दिन जो है इस मंदिर का उद्घाटन हुआ। मंदिर का उद्घाटन जब प्रधानमंत्री जी आए, हम सब जो है बेसमेंट में बंद थे, केवल 25 लोगों को अनुमति मिली थी कि वो मंदिर के प्रांगण में घूम सकते हैं, बाकी सबको बेसमेंट में लॉक कर दिए, हम सब लॉक्ड थे, हमने देखा नहीं प्रधानमंत्री जी को, इसका बड़ा दुख है हमें। तो मंदिर का उद्घाटन हुआ, उससे पहले वो कुत्ते लेकर आए थे, स्क्वाड लेके आए, बॉम्ब स्क्वाड, और डॉग्स भी लेके आए चेकिंग कराने, ऑल्टर के अंदर भी आना चाहते हैं, हमने कहा ऑल्टर के भीतर नहीं आ सकते हैं, यहाँ तो प्रधानमंत्री भी नहीं आ सकता, कुत्ते कहाँ से आ जाएंगे। तो बाहर से उन्होंने चेकिंग कराया, और टेम्पल कैंपस में कुत्तों को लेके गए, बॉम्ब तो नहीं है, बॉम्ब तो नहीं है, बॉम्ब तो नहीं है। तो इस तरह से 25 लोगों का लिस्ट बनाया, केवल उनको अनुमति प्राप्त हुई, और प्लस डोनर जो बाहर से आए थे उन सबको ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सुनने का मौका मिला। इस तरह से वाजपेयी जी ने बड़ी प्रशंसा की इस्कॉन की, और इस प्रकार ये मंदिर का उद्घाटन हुआ श्री श्री राधा पारसारथी का। अमेरिका में वॉशिंगटन पोस्ट में खबर आई थी कि ग्लोरी ऑफ इंडिया वैदिक कल्चर सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये था, ये हिस्ट्री है संक्षिप्त रूप में। और क्या जानना चाहते हैं आप? गुरु महाराज की तपस्या, एक मंदिर के लिए महाराज ने खूब तपस्या की, और पर्सनली महाराज इन्वॉल्व हुए, जिस तरह से जू टेम्पल में स्वयं श्रील प्रभुपाद जी इन्वॉल्व थे, इसी तरह महाराज पर्सनली इन्वॉल्व हुए। रोज प्रसाद लेने के बाद लगभग 9:30-10 बजे महाराज हर ब्रह्मचारी आश्रम के कमरे में घुसते और भक्तों को भगाते, जाओ प्रचार में, महाराज किसी को बैठने नहीं देते थे मंदिर में, 10 बजे पूरा मंदिर खाली, कोई टेम्पल में दिखना नहीं चाहिए 10 बजे के बाद, सब लोग बाहर जाइए। और बाहर में रूम में घुस घुस के उन दिनों तो महाराज स्पिरिचुअली तो हमेशा एक्टिव रहे, और फिजिकली अगर एक्टिव होंगे तो सोच के देखिए फिर क्या होगा। तो महाराज तो बहुत फास्ट, एक बार 92 में महाराज को हम ले गए थे कनॉट प्लेस एक डोनर से मिलाने के लिए. महाराज ने सबको बोला, लगभग सभी भक्तों को बोला, टुडे आई एम गोइंग विद मोहन रूपा टू मीट वन डोनर. तो महाराज को ले गए हम लोग, वहां पहुंचे हम लोग कनॉट प्लेस एक डोनर के पास. था तो वो जैन, लेकिन उसका बीवरेज की कंपनी है उधर बॉम्बे में. तो उससे जब मिलने गए तो वो बड़ा एकदम क्या कहते हैं उसको, गर्वित होकर बैठा था वो. और महाराज उस समय 92 की बात है, 92 की बात बता रहा हूँ. तो महाराज इंग्लिश में बोलते थे कई बार, उस समय कैनेडियन एक्सेंट में बोलते थे प्रीचिंग के लिए, क्योंकि महाराज कैनेडा में रह चुके तो महाराज जानते हैं कैनेडियन एक्सेंट क्या है. तो महाराज जानबूझ के उसके कैनेडियन एक्सेंट में बोल रहे थे. तो लेकिन वो रिस्पॉन्ड धीरे धीरे करने लगा और धीरे धीरे समझ गया कि भाई साधारण व्यक्ति नहीं है. तो उसके बाद फिर वो नीचे तक छोड़ने आया महाराज को. पहले पांव पे पांव रखकर बैठा हुआ था जब हम एंट्री किए उसके रूम में, उसके ऑफिस में. लेकिन जब निकले तो महाराज को छोड़ने नीचे आया था. फिर अगली बार जब उस मिले जैन से तो कहने लगा, आपके साथ वो आए थे ना महाराज, वो उनमें कुछ था, उनमें कुछ बात है. वो कहां से, अमेरिका से, कनाडा से? मैंने कहा इंडिया से ही है लेकिन कनाडा में रहे. तो इस तरह से फिर महाराज, और महाराज बहुत फास्ट फिर कन्वेंट जी के ऑफिस में गए तो लिफ्ट काम नहीं कर रहा था, महाराज सीढ़ियों से फटाफट चल के ऊपर चले जाते थे. एक सेकंड, मतलब एक मिनट रुकेंगे नहीं, अगर लिफ्ट नहीं काम कर रहा तो चलो सीढ़ियों से चलते हैं. और फिर वहां जो कनॉट सर्कस है जहां पे सुपर बाजार जहां पर है, तो वहां पे एक वो ड्राई फ्रूट की दुकान थी, पता नहीं अभी है कि नहीं, कश्मीर ड्राई फ्रूट करके. महाराज ने गाड़ी एकदम से रोकी, महाराज उतरे सीधा, उसको विश किया, हरे कृष्णा किया, उसने ड्राई फ्रूट उठा के दिया महाराज को. देखते ही महाराज कहते हैं मैं पहले यहाँ आया करता था इस दुकान में, जब शुरू में हम लोग प्रीचिंग करते थे, आई यूज टू गो ऑफिस टू ऑफिस, मैं ऑफिस टू ऑफिस जाता था और इस ड्राई फ्रूट की दुकान में भी आता था. तो उसने ड्राई फ्रूट दिया महाराज को देख के. मतलब कहने का मतलब है कुछ ही घंटे महाराज बहुत सारे ऑफिस कवर कर लिए दो तीन घंटे के अंदर. इतने फास्ट, इतने स्पीड था उनका उस समय, बहुत फास्ट है महाराज. तो उन दिनों महाराज जब आते थे तो जन्माष्टमी का दिन होता, तो जुहू राधा राज बिहारी जी की आरती करते मंगल आरती जन्माष्टमी के दिन, शाम को संध्या आरती करते राधा पार्शारथी का, और वृंदावन में फिर अर्धरात्रि को जन्माष्टमी बनाते. तो महाराज का शेड्यूल इस तरह से होता, एक ही दिन में तीन जगह जन्माष्टमी. तो बहुत प्रयास से, बहुत तपस्या करके महाराज ने मंदिर बनाया है, और उसका परिणाम यह है, देखिए कितने सारे मंदिर बन गए. प्रभुपाल ने कहा था कि महाराज को कि कम से कम 11 मंदिर होने चाहिए, 11 या 12 मंदिर होने चाहिए दिल्ली में, एक बड़ा मंदिर होना चाहिए. बाकी अब देखिए और भी बड़े बड़े मंदिर हो गए, द्वारका में, रोहिणी में भी बन गया आपका, आप सब भक्तों के प्रयास से. और बाकी मंदिर तो इतने तेजी से बन रहे हैं, फटाफट फटाफट है, अमेजिंग. और कई प्रॉपर्टीज भी मिल रही है, ऐसा लग रहा पता नहीं क्या, जैसे कि पहले से ही हमारी प्रॉपर्टीज हैं सारी बाहर, जिसके लिए कितना प्रयास करते हैं लोग अपनी प्रॉपर्टी के लिए. और यहाँ इस्कॉन को प्रॉपर्टीज मिलती है ठाकुर जी की सेवा के लिए. ये कृष्ण की कृपा है. तो आप सब भी इसमें भागीदार हैं, आप सब भी इसमें शामिल हैं, इस एफर्ट में वो सभी भक्त, वो सभी वैष्णव इसमें शामिल हैं जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण कार्य में या प्रचार के कार्य में सहयोग दिया. महाराज ने अपना कार्य पूरा किया कि प्रभुपाद ने 1969 में महाराज को लेटर लिखा था, उसमें लिखा था योर ड्यूटी इज टू कंस्ट्रक्ट टेम्पल्स इन इंडिया. 1969 में महाराज जब उस समय कनाडा में थे इंडिया आने से पहले, तो महाराज ने वो कार्य कर दिया. कितनी जगह मंदिर खुल रहा है, राजकोट में मंदिर खुलने वाला है अभी शायद कल या परसों जाने वाले, राजकोट में मंदिर बहुत बड़ा मंदिर बना दिया वहां पे. खारगर में बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, कुरुक्षेत्र में मंदिर बन रहा है, लुधियाना में मंदिर बन रहा है, द्वारका में मंदिर बन रहा है, रोहिणी में मंदिर बन रहा है. इतनी लंबी लिस्ट है, इतनी लंबी सूची है. तो उन्होंने अपना कार्य कर दिया है, अब हमें अपना कार्य करना है, प्रचार करके और भक्तों की संख्या बढ़ा के. आपका कार्य विशेष रूप से पंजाबी बाग के भक्तों का, रोहिणी मंदिर को फुल करना है आपने, भक्त देकर और लक्ष्मी देकर. बहादुरगढ़, तो बहादुरगढ़ में और बहादुर भेजने हैं आपको वहां पे, वो बहादुर वापस ना आए लौटकर, मैदानी जंग में लड़ते रहे वो बहादुर, उन बहादुरों को विश्वास दिलाइए, यकीन दिलाइए. तो ये सब मंदिर बन गए हैं, प्रभुपाद की विशेष कृपा है दिल्ली में. प्रभुपाद जी के चरण पड़े ना यहाँ पे, प्रभुपाद जी स्वयं रहे दिल्ली में, इसलिए चमत्कार हो रहा है. तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. कोई प्रश्न समीक्षा? सीताराम जी उसी दिन स्थापित हुए, सेम डे तीनों ऑल्टर उसी दिन खुले और तीनों डीटीस उसी दिन स्थापित हुए हैं. आशीर्वाद है आप सब भक्तों का, भारत का आशीर्वाद है, भक्तों का आशीर्वाद है, सब लोग भक्त लोग मिलकर कर रहे हैं। हरे कृष्ण, चलो प्रभुपाद की जय, रामनवमी महामहोत्सव की जय,
हरे कृष्णा। तो एक बार मोहन प्रभु जी का तहे दिल से धन्यवाद देंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत सुंदर राम कथा और पूरा उसका गौड़िया वैष्णव पर्सपेक्टिव दिखाया, दृष्टिकोण दिखाया। और जैसे प्रभु जी कह रहे थे कि सारे जगह सारे मंदिर हैं, स्टफ कैलाश के विस्तार हैं, और पूरे दिल्ली NCR में जितने भी भक्त बने हैं वो प्रभु जी के ही विस्तार हैं। कहते थे अलग अलग कोनों में भेजते थे और वहां पे एक अलग नया नया मंदिर आता है। तो बहुत धन्यवाद मोहन प्रभु जी का। और आपको जाने खुशी होगी, जैसे परसों रामनवमी है तो हर फेस्टिवल में हम लोग प्रयास करते हैं कि श्रवण बढ़ाया जाए, कीर्तन बढ़ाया जाए। तो शाम को राम कथा भी चल रही है और साथ साथ में और हम जैसे प्रभु जी ने बताया कि राम भगवान राम पर मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में मर्यादा को स्थापित कर सकते हैं। तो एक बहुत सुंदर बुक DBT की तरफ से आई है, ये है रामायण आर्ट बुक। कितने लोगों ने बुक देखी है? बहुत ही पूरी के पूरे 7 कांड, बहुत ही सुंदर हाई क्वालिटी पेजेस में और हाई क्वालिटी फोटोग्राफ्स साथ साथ में ये पुस्तक आई है। और जैसे कि हर फेस्टिवल पे हम स्पेशल ऑफर देते हैं आपको कि आप ये पुस्तक ले सकते हैं, तो वैसे ये पुस्तक 4500 की है, लेकिन रामनवमी के उत्सव पे स्पेशल डिस्काउंट आपको केवल 4000 रुपए में उपलब्ध हो जाएगी। और ध्यान से सुनिए, इसकी केवल 5 कॉपियां बची हैं। एक ऑलरेडी सोल्ड पहले से कर दिए, गलत बात है, पीछे से उन्होंने कॉपी पहले निकाल दी, तो कल 4 कॉपियां बची हैं। तो जो भाग्यशाली भक्त हैं 4 लोग, तो ओहो ऊपर सोने पे सुहागा और पर जी के पर्सनल साइन उसमें हो जाएंगे, आशीर्वाद मिल जाएंगे।
तो हम तो कह रहे सारी कॉपियां ले लो आप, बाद में दे देना पैसे।
4 कॉपी कुछ भी
नहीं, पोस्ट डेटेड चेक चल जाएगा।
ये हमने वैसे तो रखते तो वहीं पे निकल जाती, लेकिन क्योंकि हमारी रीत रही है कि हर फेस्टिवल में कुछ ना कुछ आपको एक अच्छा ऑफर दे, तो ये एक ऑफर है, तो इसको आप चाहें तो इसके पर लाभ उठा सकते हैं। हरे कृष्णा।
अच्छा बताना भूल गए, क्योंकि रामनवमी है 14 तारीख को, तो आप सब आइए, सादर निमंत्रण है। और सुबह अभिषेक होगा वहां पे 10:30 बजे, तीनों ऑल्टर्स का एक साथ अभिषेक करेंगे हम लोग, साल में एक बार करते हैं, तीनों ऑल्टर्स का एक साथ अभिषेक। और खासकर जो ब्राह्मण दीक्षित है वॉल्टर में आके अभिषेक भी कर सकते हैं, जो नई दीक्षित है वो संकीर्तन में भाग ले सकते हैं, और उसके बाद प्रसाद भी होगा, प्रसाद भी ले सकते हैं, पूरा लाभ उठा सकते हैं। आइए आइए आइए, परिवार के साथ, भक्तों के साथ, ब्रह्मचारियों के साथ।
रामनवमी महामहोत्सव की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, जय गोर प्रेमानंदे।